लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आप्रवासियों, शरणार्थियों और युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि शिक्षा पाने के उनके अधिकार का सदैव सम्मान किया जाए, जो एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है ख्रिस्तीय एकता के समापन प्रार्थना में संत पापा फ्रांसिस का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिरकी। संत पापा फ्रांसिस ने संत पौलुस के मन परिवर्तन पर्व की संध्या ख्रिस्तीय एकता के समापन प्रार्थना की अगुवाई की।
Gesù arriva nella casa delle sue amiche, Marta e Maria, quando il loro fratello Lazzaro è già morto da quattro giorni.
Gesù अपने मित्रों मार्था और मरियम के घर में लाजरुस की मृत्यु के चार दिन बाद आते हैं। अपनी सारी आशाओं को खोए मार्था अपने दुख और यीशु के देर आने पर व्यथा व्यक्त करते हुए कहती है, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई लाजरुस नहीं मरता। यद्यपि वही यीशु की उपस्थिति मार्था के हृदय में आशा की ज्योति को प्रज्वलित करती और उसे विश्वास की अभिव्यक्ति हेतु अग्रसर करती है, लेकिन मैं जानती हूँ आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे वह आपको मिलेगा। यह हमारे लिए उस मनोभाव को व्यक्त करता है जहां हम अपने द्वार को सदैव खुला रखते हैं, उसे कभी बंद नहीं करते। यीशु उसे न केवल भविष्य में पुनरुत्थान की बातें कहते हैं जो दुनिया के अंत में होगा, बल्कि जो वर्तमान में भी हैं, क्योंकि वे स्वयं पुनरुत्थान और जीवन हैं। वे उसे पूछते हैं कि क्या वह इस बात पर विश्वास करती है। यह सवाल हम सबों के लिए भी है, क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं? हम इस सवाल पर चिंतन करें, क्या तुम विश्वास करते हो? यह एक छोटा लेकिन चुनौतीपूर्ण सवाल है। यीशु और मार्था के बीच एक मिलन जिसे हम सुसमाचार में पाते हैं, हमें उदासी के समय में भी इस बात की शिक्षा देती है कि हम अकेले नहीं हैं और हम आशा में बने रह सकते हैं।
Gesù dona vita anche quando sembra che ogni speranza sia svanita.
यीशु हमें जीवन देते हैं उस समय भी जब सारी आशाएं हमारे लिए विलुप्त लगती हैं। हम अपनी आशा को एक दर्द भरे क्षण में, बीमारी, एक कटु निराशा या अचानक धोखे की घड़ी में डगमगाता पाते हैं, लेकिन सुसमाचार हमें बतलाता है कि यीशु सदैव हमारी आशा को पुनः स्थापित करते हैं, क्योंकि वे हमें मृत्यु के गर्त से बाहर निकालते हैं। वे हमें अपने गिरे हुए क्षणों से उठाते और नई शुरुआत करने, आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा कि हम इस बात को ना भूलें कि आशा हमें कभी निराश नहीं करती है। यह तट में एक रस्सी की भांति है जिसमें हम लटके रह सकते हैं। यह हमें कभी निराश नहीं होने देती है। यह हमारे ख्रिस्तीय समुदाय, कलीसिया और एकतावर्धक संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम अपनी थकान भरी मेहनत के बावजूद मिले परिणाम से हताश हो जाते हैं। हमारे लिए ऐसा प्रतीत होता है मानो वार्ता और दोनों तरफ से किए गए प्रयास अपने में व्यर्थ हैं। ये सारी चीजें हमें मार्था के अनुभवों के संग संयुक्त करती, लेकिन यीशु हमारे पास आते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुम विश्वास करते हो कि वे पुनरुत्थान और जीवन हैं, कि वे हमारे प्रयास को फलहित करती और सदैव हमें अपनी यात्रा में आगे बढ़ने को मदद करते हैं? क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं। आशा का यह संदेश जयंती के केंद्र बिंदु में है, जिसकी शुरुआत हमने की है। संत पौलुस, जिसके मन परिवर्तन का पर्व आज हम मना रहे हैं, रोम के ख्रिस्तियों के लिए यह घोषित करता है, आशा हमें निराश नहीं करती है, क्योंकि ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा के द्वारा उडेला गया है। हम सबों ने उस पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है जो हमारी एकता वर्धक यात्रा की आधारशिला है। पवित्र आत्मा हमारी यात्रा के मार्गदर्शक हैं। हमें पवित्र आत्मा के निर्देश का अनुसरण करने की जरूरत है। कैथोलिक कलीसिया द्वारा मनाए जाने वाली आशा की जयंती वर्ष सभी ख्रिस्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो निश्चय प्रथम महान विश्वव्यापी धर्म सभा की 1700वीं वर्षगांठ से मेल खाती है। उस धर्म सभा ने कलीसिया की एकता को एक कठिन समय में बनाए रखने की कोशिश की, और धर्म सभा के आचार्यों ने एक मत से विश्वास के धर्म सार को स्वीकार किया, जिसे अब भी बहुत से ख्रिस्तीय रविवार ये यूखारिस्तीय धर्म विधि में घोषित करते हैं। यह हमारे लिए सामान्य विश्वास के सार को व्यक्त करता है, जो सदियों के सभी विभाजनों से परे हमें ले जाती है। संत पापा ने कहा कि निश्चय की धर्म सभा हमारे लिए इस भांति कृपा का वर्ष रहा, एक अवसर जहां सभी ख्रिस्तीय एक ही धर्म सार को घोषित करते हुए एक ही ईश्वर पर अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं।
Questo credo è una professione di fede comune.
हम सामान्य विश्वास की जड़ों को पुनः खोजें, हम अपनी एकता को बनाए रखें, आइए हम सदैव आगे बढ़ें। संत पापा ने कहा, हमारे लिए वह एकता मिले जिसकी खोज हम कर रहे हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, यह विश्वास जिसे हम साझा करते हैं अपने में एक मूल्यवान उपहार है, लेकिन इसके साथ ही यह एक उत्तरदायित्व भी है। इस वर्षगांठ को न केवल एक ऐतिहासिक स्मृति के रूप में मनाया जाना चाहिए, बल्कि हमारे बीच बढ़ते हुए मिलन की गवाही देने की प्रतिज्ञा स्वरूप भी इसे मनाया जाना चाहिए। हम इस बात का ध्यान रखें कि यह हमारे हाथ से न जाए, बल्कि मजबूत बंधन बने, आपसी मित्रता विकसित करें और मिलन भाईचारे का साधन बने। ख्रिस्तीय एकता हेतु प्रार्थना के इस सप्ताह में हम निश्चा धर्म सभा की वर्षगांठ से एकता में दृढ़ रहने का आह्वान को सुदृढ़ कर सकते हैं। इस वर्ष पास्का का उत्सव ग्रेगोरियन और जूलियन दोनों कैलेंडर में एक साथ मनाया जा रहा है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो ईश्वरीय कृपा को स्थापित करती है। मैं अपनी अपील को दोहराता हूँ कि यह संयोग सभी ख्रिस्तियों के लिए पास्का के त्योहार को एक आम तिथि में मनाने हेतु एक निर्णायक कदम लेने में मदद करे। कैथोलिक कलीसिया उस तिथि को स्वीकार करने हेतु खुली है जो हमारे लिए एकता की तिथि होगी। संत पापा ने प्राधिधर्माध्यक्ष पॉलिकार्प के प्रति आभार व्यक्त किया, जो विश्वव्यापी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने प्राधिधर्माध्यक्ष इयन अर्नेस्ट के प्रति अपने आभार व्यक्त किए, जो एंग्लिकन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना बहुमूल्य सेवा दे रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि यीशु में आशा सदैव संभव है। जब हम एकता में उसकी ओर यात्रा करते हैं तो वे हमारी आशा को भी बनाए रखते हैं, और हम फिर से मार्था से पूछे गए प्रश्न की ओर लौटें, क्या तुम इस पर विश्वास करती हो? क्या हम एक दूसरे के साथ संवाद में विश्वास करते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं कि आशा कभी निराश नहीं करती है?
Questo è il tempo di confermare la nostra professione di fede nell'unico Dio e trovare in Cristo Gesù la via dell'unità.
संत पापा ने कहा कि यह समय ईश्वर में अपने विश्वास की पुष्टि करने और यीशु मसीह में एकता का मार्ग खोजने का है। तो आइए हम सबों के सामने ईश्वर के एकमात्र पुत्र, जो हमारी आशा के स्रोत हैं, गवाही देने से कभी ना थकें।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। दीजिए प्रस्तुत है समाचार। विश्व रोगी दिवस के लिए अपने संदेश में पोप फ्रांसिस ने कहा है कि ईश्वर उन लोगों के करीब रहते हैं जो पीड़ित हैं। विश्व रोगी दिवस, जिसे आमतौर पर हर 3 साल में मनाया जाता है, 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। 33वें विश्व रोगी दिवस के लिए अपने संदेश में पोप फ्रांसिस ने उन गंभीर सवालों पर प्रकाश डाला है जो पीड़ितों और उनकी देखभाल करने वालों के सामने आते हैं। हम कैसे मजबूत हो सकते हैं जब हमारा शरीर गंभीर दुर्बल करने वाली बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिसके लिए महंगे उपचार की आवश्यकता होती, जिससे हम वहन नहीं कर सकते। हम कैसे मजबूती दिखा सकते हैं जब अपने दुखों के साथ साथ हम अपने उन प्रियजनों को देखते हैं जो हमारा समर्थन करते लेकिन हमारी मदद करने में असमर्थ महसूस करते हैं। हालांकि सच्ची आशा निराश नहीं करती और वास्तव में हमें परीक्षा के समय में मजबूत बनाती है, लेकिन यह भरोसा अक्सर दुख की वास्तविक परिस्थितियों में उलझन भरा साबित होता है। पोप फ्रांसिस कहते हैं, ऐसी स्थितियों में हमें अपनी दुख की तुलना में ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। हमें एहसास होता है कि हमें ईश्वर की मदद, उनकी कृपा, उनकी दया और उनकी आत्मा के वरदान के रूप में ताकत की जरूरत है। संत पापा ने पीड़ितों के करीब रहने के लिए विश्वासों को 3 खास तरीकों, मुलाकात, उपहार और साझा करने पर चिंतन करने हेतु प्रेरित किया। पोप याद करते हैं कि जब यीशु ने 72 शिष्यों को मिशन पर भेजा तो उन्होंने उन्हें रोगियों से कहने के लिए कहा, ईश्वर का राज्य तुम्हारे करीब आ गया है, अर्थात रोगियों को उनकी दुर्बलता को प्रभु से मिलने का एक अवसर के रूप में देखना। उन्होंने बतलाया कि यह मुलाकात परिवर्तनकारी हो सकती है जो हमें एक ठोस चट्टान खोजने में मदद करती है, जिससे हम जीवन के तूफानों के बीच चिपके रह सकें। एक ऐसा अनुभव जो हमें और भी मजबूत बनाता है, क्योंकि यह हमें सिखलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। पोप कहते हैं कि यह हमें हमारे दुख में ईश्वर के निकटता को एक उपहार के रूप में अनुभव करने की ओर ले जाता है। किसी भी अन्य चीज से ज्यादा दुख हमें यह एहसास कराता है कि आशा प्रभु से आती है। इसलिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह एक उपहार है जिसे ईश्वर की निष्ठा के प्रति वफादार बने रहकर प्राप्त किया जा सकता है। अंत में संत पापा बतलाते हैं कि बांटने या शेयरिंग करने के माध्यम से ईश्वर हमारे करीब हैं, जिससे अक्सर दुख के स्थानों में देखा जाता है। कितनी बार बीमारों के बिस्तर के पास हम आशा करना सीखते हैं, कितनी बार पीड़ित लोगों के साथ हमारी निकटता से हम विश्वास करना सीखते हैं, कितनी बार जब हम जरूरतमंदों की देखभाल करते हैं तो हम प्यार पाते हैं। पोप ने उन्हें पूरी कलीसिया एवं अपने नाम पर उनकी गवाही के लिए धन्यवाद दिया तथा आश्वस्त किया कि वे हमेशा उनके लिए प्रार्थना करते हैं तथा अंत में उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। विश्व रोगी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है और हर 3 साल में लूर्द के मरियम तीर्थस्थल पर एक विशेष उत्सव मनाया जाता है। हालांकि जयंती वर्ष 2025 को देखते हुए पोप फ्रांसिस ने इस समारोह को एक वर्ष के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। पोप फ्रांसिस ने भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्षों का आह्वान किया है कि वे अपनी प्रेरिताई में गरीबों और कमजोर लोगों को प्राथमिकता दें तथा उनसे कलीसिया के द्वार खोलने का आग्रह किया है। यह बात संत पापा फ्रांसिस ने भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन की 36वीं महासभा को संबोधित करते हुए कही है, जो कटक भुवनेश्वर महाधर्म प्रांत में XIM विश्वविद्यालय में आयोजित की गई है। CCBI के उपाध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष जॉर्ज एंटनी स्वामी द्वारा पढ़े गए संदेश में पोप ने धर्माध्यक्षों के विचार विमर्श के लिए अपना प्रार्थनापूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने उन्हें धर्म सभा की यात्रा के परिणामों को लागू करने में स्थानीय कलीसियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। पोप कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके विचार विमर्श से स्थानीय कलीसियाओं को यह समझने में सहायता मिलेगी कि धर्म सभा के मार्ग के लाभों को सर्वोत्तम तरीके से कैसे कार्यान्वित किया जाए तथा मिशनरी शिष्य बनने के लिए अधिकाधिक विश्वासियों को कैसे प्रेरित किया जाए। जयंती वर्ष का जिक्र करते हुए पोप ने भारत में कलीसिया पर भरोसा जताया है और उम्मीद की किरण के रूप में इसकी भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि इस जयंती वर्ष में भारत में कलीसिया पूरे देश के लिए उम्मीद की किरण बनेगी और हमेशा गरीबों तथा सबसे कमजोर लोगों का स्वागत करने के लिए अपने दरवाजे खोलेगी ताकि सभी को बेहतर भविष्य की उम्मीद हो सके। इस सभा का उद्घाटन भारत और नेपाल के प्रेरितिक राजदूत महाधर्मदक्ष लियोपोल्डो जिरेली ने किया, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए पौत्री युखरिस्त समारोह की अध्यक्षता की। महाधर्मदक्ष जॉन बारवा एसवीडी ने ओडिशा में धर्मदक्षों एवं गण्यमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में सीसीबीआई और फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने भारत में ख्रिस्तीय जीवन और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बढ़ती चुनौतियों पर प्रकाश डाला। कार्डिनल फेराओ ने कहा, भारत ख्रिस्तीय जीवन और धार्मिक स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने 18 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के अधिनियमन और ख्रिस्तों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा कलीसिया की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एकजुटता, प्रार्थना और ठोस कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने पुष्टि की कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत में कलीसिया जीवंत और दृढ़ बनी हुई है। मिशन के लिए धर्म सभा के मार्ग को समझना विषय वस्तु के साथ इस सभा में भारत में लातिनी कलीसिया के 204 धर्माध्यक्षों को कलीसिया के मिशन पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सीसीबीआई एशिया में सबसे बड़ा धर्माध्यक्ष सम्मेलन और विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें 132 धर्म प्रांत और 209 धर्माध्यक्ष हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय बुद्धिमत्ता के बीच संबंधों पर एक दस्तावेज में विश्वास के सिद्धांत और संस्कृति एवं शिक्षा के लिए गठित विभाग ने शिक्षा, अर्थव्यवस्था, श्रम, स्वास्थ्य, मानव और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा युद्धरत देशों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता तथा चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।